ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आबकारी नीति से संबंधित रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार की आलोचना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, अब तक 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मौसम विभाग की 150वें स्थापना दिवस समारोह में मिशन मौसम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी ने लोहड़ी पर शुभकामनाएं दी। और खो खो विश्व कप नई दिल्ली में आज से शुरू, पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कतरा रही है। एक रिपोर्ट।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधानसभा सचिवालय में कहा कि कैग की रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि सरकार अपनी आय और व्यय का ब्यौरा रखना आवश्यक नहीं समझती।
ये एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते।
न्यायालय ने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट को पेश करने में अपने कदम पीछे खींचे हैं, इससे उसकी ईमानदारी पर संदेह होता है। कैग की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित है। इसमें सरकारी कोष को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व नुकसान होने की बात कही गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा पर सवाल उठाए।
एम्स में, सफदरजंग में, एनडीएमसी में, डीडीए में, केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित सभी संस्थानों में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। पहले 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जाट समाज को, उसके बाद 2017 में, 2019 में और 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, लेकिन दोनों ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया।
प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए की बैठक के दौरान शकुर बस्ती इलाके के भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि डीडीए ने न तो इस कॉलोनी के भूमि उपयोग में बदलाव किया है और न ही कोई बेदखली या तोड़फोड़ का नोटिस दिया है। श्री सक्सेना ने कहा कि डीडीए की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के दो विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
शकुर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया। श्री केजरीवाल जानबूझ कर कोरा झूठ बोल रहे।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर श्री केजरीवाल से सवाल किए हैं। पार्टी नेता हरीश खुराना ने श्री केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक से इस मुद्दे पर लोगों से माफी मांगने को भी कहा।
दिल्ली का वो चुनाव हार रहे हैं और इन पर नजर आ रहा है। इस हार की बुखलाहट में लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। लालजी साहब ने क्लैरिफाई करा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि झूठ बोल रहे हो।
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अवध ओझा के मत को ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। श्री केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। श्री केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा द्वारा मतदाताओं को पैसे और चादर बांटने तथा स्थानीय जिलाधिकारी की लापरवाही को लेकर भी शिकायत की है।
खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक और कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए।
इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवीश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद झुग्गियों में तोड़फोड़ करवा रहे हैं।
ये सारे दिल्ली के गरीब लोगों का चेहरा बैठा है। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1,00,000 रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला।
दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने आज कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के सुचारू मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों की सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
Have identified one nodal officer for the each district and they are in place. And apart from that, we have a flying squad, 3 per shift. And in that sense, 9 in a day, flying squad and SST. That is operative throughout 24.
सुश्री वाज ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और दिव्यांग घर बैठे मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को लाने ले जाने की सुविधा भी विशेष रूप से उपलब्ध होगी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जैसे जैसे गति पकड़ रही है वैसे वैसे सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सीलमपुर में एक चुनावी रैली कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा इकाई के नेता और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कालकाजी में रोड शो किया। पेश है हमारे संवाददाता दिवाकर की रिपोर्ट।
दिल्ली चुनाव में अपने मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए तीनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर दिन एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच सोशल मीडिया भी चुनावी अखाड़े में बदल चुका है, जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भाजपा मीम्स, पोस्टर और क्रिएटिव वीडियो के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने आवास पर सुविधाओं के लिए कथित रूप से बड़ी राशि खर्च करने, आम आदमी पार्टी द्वारा पूर्वांचलियों का अपमान और कथित शराब घोटाले जैसे मुद्दों पर भाजपा सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को प्रमुखता से घेर रही है। वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने मीम्स और क्रिएटिव वीडियो द्वारा भाजपा से उनके मुख्यमंत्री के चेहरे, पार्टी नेताओं द्वारा कथित तौर पर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल और राजधानी में फर्जी वोटर जैसे विषय पर विपक्षी पार्टी को घेरने में लगी है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है बादली विधानसभा सीट की जानकारी के साथ अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट।
दिल्ली की बादली सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं। इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजेश यादव से है। वहीं भाजपा ने सीट से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके दीपक चौधरी को मैदान में उतारा है। बादली विधानसभा सीट पर 1993 से अब तक 3 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस और 2 बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में अजेश यादव ने करीब 30,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार भगत को मात दी थी। 2,30,000 से अधिक मतदाताओं वाली सीट पर 1,30,000 से अधिक पुरुष और 1,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो सड़कों के खराब रखरखाव, जल निकासी, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटों का न होना और गंदगी की प्रमुख समस्याएं हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के रोहिणी में स्थित इस सीट पर इस बार तीनों दलों के प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अजेश यादव जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर भाजपा के उम्मीदवार दीपक चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव अजेश यादव के जीत के रथ को रोकने में कामयाब होते हैं।
विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 29 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी आदर्श आचार संहिता की मद्देनजर दिल्ली नगर निगम ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 12,000 से अधिक होर्डिंग्स और 63,000 से अधिक पोस्टर हटाए हैं। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे 14,000 से ज्यादा झंडे और 2,000 से अधिक साइन बोर्ड भी हटाए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के विभिन्न जिलों में छापा मारकर 9 करोड़ से अधिक की नकद राशि, 45 लाख रुपए से अधिक की 14,000 लीटर शराब, 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और 6 करोड़ से अधिक की कीमती वस्तुएं जब्त की हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 से 9 में प्रवेश की घोषणा की है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। निदेशालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली नगर निगम की स्कूलों से 5वीं और सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों से 8वीं पास विद्यार्थी कक्षा 6 और 9 में दाखिला ले सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की मौसम और जलवायु के प्रति समर्पित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ कल मौसम मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों के माध्यम से उच्च प्रदर्शन हासिल करना है। श्री मोदी नई दिल्ली में मौसम विभाग की 150वें स्थापना दिवस समारोह में इसकी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मौसम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए मौसम विभाग के विजन 2047 दस्तावेज को भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी ने आज हर्षोल्लास और उमंग के पर्व लोहड़ी पर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि ये पर्व हमारे जीवन में प्रकृति, कृषि और उत्सव धर्मिता के महत्व को उजागर करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली वासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व पर सभी के जीवन में सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बाघ बिहू त्योहारों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और सभी के जीवन में उत्साह और खुशियां लाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार हमारे देश के विविध परिदृश्यों में अनूठे ढंग से मनाए जाते हैं और ये त्यौहार फसल के मौसम का सम्मान करने की देश की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे खो खो विश्व कप में पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। ये मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। सभी ग्रुप से शीर्ष 2 टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल 19 जनवरी को खेला जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा समर्थित खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ 2025 न केवल आध्यात्मिक समागमों के लिए बल्कि वैश्विक पर्यटन के लिए भी ऐतिहासिक आयोजन है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज दोपहर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आबकारी नीति से संबंधित रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार की आलोचना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मौसम विभाग की 150वें स्थापना दिवस समारोह में कल मिशन मौसम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी ने लोहड़ी पर शुभकामनाएं दी। और खो खो विश्व कप नई दिल्ली में आज से शुरू, पहला मैच भारत और नेपाल के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।